الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 8 ہے ہماری آج جو ہم پڑھیں گے. کچھ حصہ ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کر لیا تھا سورہ آل عمران کا, اور کچھ حصہ ہم آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اتنی بات پیچھے ہو گئی تھی کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں, ایک محکم ہیں اور ایک متشابہ ہیں. محکم آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اور وہ باتیں کہی ہیں جن کا مستاق فزیکل ورلڈ میں ان کی مینیفیسٹیشن یا ان کا جو بھی تصور ہے, حقیقت ہے, وہ ہم جان سکتے ہیں. اور وہ باتیں متشابہات ہیں جن کا مستاق اس میٹیریل ورلڈ میں ہم نہیں جان سکتے, وہ متشابہ ہیں. تو اب قرآن مجید میں کیا دنیا کی تمام باتوں میں, تاریخ میں, سائنس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو متشابہات کی شکل اختیار کر سکتی ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ کوانٹم فزکس پہ جا کر الیکٹرون پارٹیکلز ہوتے ہیں یا ویوز ہوتی ہیں, یہ امر متشابہ ہو گیا ہے, اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید کی بہت ساری باتیں جو امر متشابہ ہیں, مثال کے طور پر حضرت آدم کا کلمہ کن سے پیدا کرنا, کائنات کا کلمہ کن سے پیدا کرنا, سور میں پھونکا جائے گا, سور کیا چیز ہے, پھونکنے کا مطلب کیا ہے, اس پھونکنے کے بعد جو آواز آئے گی اس کی کیا کیفیت ہوگی, کس صورت میں ہوگی, یہ سارا کچھ جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے. ہمارے لیے قرآن مجید میں جو چیزیں زیر بحث آئیں اور جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین کے لیے مسئلہ بن گئی, ان میں ایک چیز یہ تھی کہ شجرت الزقوم, قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کی جو جڑ ہے وہ آگ کے اندر سے نکلتی ہے. اب ایک طرف وہ درخت ہے, ایک طرف آگ کے اندر سے اس کی جڑ نکلتی ہے, یہ ہماری عام زندگی میں تو ناقابل فہم. تو لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ اچھا یہ کون سا درخت ہے جی جو آگ کے اندر سے نکلے گا اور درخت بھی ہوگا. تو کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کل قیامت والے دن دوزخ میں کس طرح کے درخت ہو گئیں گے کیا نہیں, تو اس لیے مذاق بن جائے گا. قرآن مجید کے مخاطبین کے لیے یہ بات بھی فتنہ بن گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والا رویا دیکھ لیا کہ آپ حرم پاک سے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے, یہ خواب فتنہ بن گیا. اسی طرح جو دوزخ پر 19 فرشتے ہوں گے وہ بھی مسئلہ بن گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ متشابہ امور میں چلی جاتی ہیں, اور اس زمانے میں بھی لوگوں کے لیے فتنے کا باعث یا ایمان کو نہ لانے کا باعث بن گیا. تو اس وجہ سے متشابہات جو ہیں وہ ہمیشہ انسانوں کے لیے مشکل رہی ہیں. اور میں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ متشابہ آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کے معنی واضح نہیں ہوتے یا ان کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں, ان میں بات واضح ہوتی ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بات کہی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمہ کن سے بنایا, کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے. یہ پروسیجر کیا تھا اس کا, کیا سوچا تھا اللہ نے, پھر سوچنے کے بعد حکم کس طرح کا ہوتا ہے, بس خالی کلمہ کن آتا ہے یا اس میں کوئی لمبی تفصیل ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ پتہ معنی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ بولا تخلیق کرنے کے لیے اور وہ بن گئے. تو بالکل عین ممکن ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہ ہو. اور یہ بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کسی چیز کا مستاق معلوم نہ ہو, فزیکل ورلڈ میں اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو, تب بھی ہم جملے سمجھ جاتے ہیں, بات سمجھ جاتے ہیں, اور اسی تک رہنا ہی علم اور عقل کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ہم آگے جانے کی کوشش کریں تو یہ علم کے رویے کے خلاف ہوگا. مثال کے طور پر یہ بات کوشش کرنا کہ فرشتوں کی شکل کیا ہے, اس کو متعین کرنے کی کوشش کرنا جبکہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں, تو یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا. علم کا دائرہ کیا ہوتا ہے یہ ہم سارے جانتے ہیں, ہمارے حدود کیا ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن کی طاقت کیا ہے, ہماری آنکھوں کی طاقت کیا ہے, یا زیادہ سے زیادہ ہم ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ لگا کر کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اب جیمز ویب نے جو ٹیلیسکوپ بنائی ہے نئی, انہوں نے اس نے کچھ ہمارے لیے اور راستے کھولے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے. تو بس یہ حدود ہیں, इसका मतलब है हबल जो कुछ देख रही थी उससे पहले जो टेलीस्कोप थी वो जो कुछ देख रही थी जेम्स वेब ने उसके आगे हमें ले गई। तो अब हम जेम्स वेब की बुनियाद पर ये बात नहीं कह सकते जो हम हबल की बुनियाद पर कहते रहे, यानी अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि मसलन हबल की बुनियाद पे हमने कहा कि बिग बैंग हुआ और वो 13-14 अरब साल पहले हुआ, अब पता चल रहा है कि 13 अरब साल पहले गैलेक्सीज मौजूद थे, तो अब हम ये दावा नहीं कर सकते पहले की तरह। अगर करेंगे तो बेवकूफ़ी करेंगे कि आप कहेंगे 26 अरब साल पहले की बात है। तो ये जो दावे होते हैं फिर इसका मतलब कल कल एक और जेम्स वेब आएगी, वो हमारी गलती वादे कर देगी तो फिर वहीं के वहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम इल्म के हदूद में बाज़ का तजावुज़ कर जाते हैं, एक ऐसी चीज़ डिसाइड कर लेते हैं जिसका डाटा हमारे पास पूरा नहीं होता। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास तमाम हकीकतों का इल्म आ जाए। फाइनल वर्डिक्ट किसी भी नॉलेज में उस वक्त होती है जब आप उससे मुतल्लक सारी चीज़ों को जान लेते हैं। और इंसानों का मामला तो यह है कि उनको यह भी पता नहीं चलता कि हमने सारी चीज़ें जान ली कि नहीं। उसके बगैर, पूरी हकीकत को जाने बगैर हम इस कायनात के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। हाँ, अज्ज़ा में हम बढ़ते जाते हैं कि ठीक है ये बात हल हो गई, इसमें लगता है हमारे पास पूरी मालूमात आ गई, लेकिन नहीं आती हैं तो वो फिर टूट जाता है। तो इंसानों के बस में ही नहीं है कि वो पूरी हकीकतों का इल्म जान सकें। जब तक पूरी हकीकतों का इल्म नहीं जान लेते तब तक कोई फाइनल अल्टीमेट नॉलेज तक हम नहीं पहुंच सकते, ये नामुमकिनात में से। तो मुतशाबिहात के पीछे पड़ने वाले यही काम करते हैं कि वो उन चीज़ों में पड़ जाते हैं जिनकी हदूद हमारे पास नहीं है, जिनकी सलाहियत हमारे पास नहीं है, जो हमारी 5 सेंसेस की ना रेंज में आते हैं ना हमारे कुछ इस तरह के जो एड देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं या प्रोब्स हैं, टेलीस्कोप हो गए या हमने कोई रॉकेट भेज दिया, वो चीज़ें भी हमारे पास नहीं हैं। लेकिन हम उसके बगैर अकली मुशगाफियों के ज़रिए से उनके मानी तय करते हैं। जैसे हमने पिछले साल से पहले बिग बैंग का नज़रिया कायम कर रखा था कि वो 13 अरब साल पहले हुआ। अब यहाँ तो ये कहना पड़ेगा कि 13 अरब साल बिग बैंग से पहले भी यूनिवर्स मौजूद थे, या ये कहना पड़ेगा कि बिग बैंग को पीछे ले जाना है, क्या वो 26 अरब साल पीछे चला जाए। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास परफेक्ट हर तरह की तमाम मालूमात हमारे पास नहीं थी। तो ये वो चीज़ है जिसको समझना चाहिए कि हमारे हदूद इल्म क्या है, हमारी सलाहियत क्या है, हमें उन्हीं जो हमारे पास मालूमात हैं उन्हीं की बुनियाद पर इल्म हमारा कायम होता है। जैसे ही मालूमात तब्दील होती हैं इल्म दराम से गिर जाता है। तो मुतशाबिहात के बारे में भी लोगों ने ऐसा ही किया। बाद की जो उम्मत थी हमारी सहाबा के बाद, यानी सहाबा के ज़माने में मैंने बता दिया कि अहले किताब और मुशरकीन अरब के लिए क्या चीज़ें मसला बन गई कुरान की। बाद में क्या हुआ कि और बहुत सारी चीज़ें मसला बन गई, मसलन नबी सल अल्लाह ताला का जिस्म है कि नहीं है। कुछ लोग इसके कायल हो गए कि अल्लाह का जिस्म है, क्योंकि जिनके सामने ये आयत का मतलब था कि अल्लाह ताला किसी तख्त पर बैठते हैं तो बैठने का अमल, जगह घेरने का अमल, ये तो किसी जिस्म के साथ ही होता है। तो अल्लाह के जिस्म का मसला पैदा हो गया, अल्लाह के हाथों की हकीकत का मसला पैदा हो गया, अर्श का मसला पैदा हो गया। बाद के लोगों ने कलाम, अल्लाह का कलाम अल्लाह की ज़ात है कि वही है, ये मसले पैदा हो गए। तो ये भी अमूरे मुतशाबिहात हैं सारे के सारे। अल्लाह का हाथ कैसा है? मुतशाबे मामलात में से। अल्लाह का तख्त कैसा है? मुतशाबे मामलात में से। अब अल्लाह का तख्त 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, वो तख्त जिस पे अल्लाह ताला बैठते हैं वो 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है ना। सवालात सवालात पर सवालात, तो उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारी इल्म की हदूद में ये चीज़ें नहीं आती कि वो 8 फरिश्ते कैसे हैं, अल्लाह का तख्त कैसा है, 8 फरिश्ते क्यों उठाए हुए हैं, फरिश्ते ही क्यों उठाए हुए हैं, कहीं रखा क्यों नहीं हुआ। तो क्या अब देखिए ना, कई बहसें पैदा हो जाएंगे कि अल्लाह ताला के तख्त फरिश्ते लेकर उड़ते रहते हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर बैठते हैं, यानी कोई जगह नहीं अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला का तो कोई मकान होना नहीं चाहिए, ना मकान का जो तसव्वुर है वो पैदा हो गया। तो इस तरह की बेशुमार बातें हमने अमूरे मुतशाबिहात में मुदाखलत करके बना डाली, इसको अल्लाह ताला रोकना चाहते हैं यहाँ। तो फरमाया कि फ़अम्मल लज़ीना फ़ी कुलूबहिम ज़ैगुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन, वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग है वो उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं जो मुतशाबे हैं। तो जैक जो है वो दो तीन सियाक व सबाक के अतबार से कह रहा हूँ, जैक का असल मतलब तो कजी है, टेढ़पन है, या सही बात से हट जाना है, इसके ये मानी होते हैं। बस आदमी सीधा जा रहा है तो हट गया रास्ते से, ये भी जैक है। सही रवैये पर था, उल्टे रवैये पर आ गया, ये भी जैक है। लेकिन यहाँ सियाक व सबाक में जैक के मानी दो तीन पहलुओं से हैं। एक रासिखून फिल इल्म के पहलू से जो आगे आ रहा है, और दूसरा उलिल अलबाब के पहलू से है, और तीसरा जो है वो रासिखून इल्म के दो पहलू हैं, दोनों के पहलुओं से तीसरा पहलू आ जाएगा। तो पहले मैं जुमले का मतलब वाज़े कर दूं, फिर इन तीनों को देखते हैं। तो फरमाया कि जो जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ है या जैग है, वो मुतशाबे आयतों की पैरवी करते हैं। अब रासिखून फिल इल्म के दो पहलू हैं, एक ये कि पक्का इल्म, अपने इल्म में मजबूत हैं, तो जिनके जो अपने इल्म में मजबूत नहीं है वो जैग वाले हो जाएंगे। इस एतबार से जैग का मतलब होगा कि वो पंजाबी का एक मुहावरा सा है, पा ना पड़ी तो वक्त में फड़ी, कि थोड़ा जाने और उसके बाद मुसीबत पड़ गई। वो थोड़ा सा पड़ा और उसके बाद मुसीबत बन गई। हर जगह पे वही बातें कर रहा है, ना समझ है ना शऊर है, लेकिन उसी थोड़े इल्म की बुनियाद पर वो फितना बन जाता है आदमी। एक ये मतलब हुआ कि वो लोग जिनके पास इल्म है ही नहीं है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरे जैक का मतलब यह है कि खुद हकीकत इल्म से वाकिफ नहीं है, क्योंकि जब कहा जाएगा रासिखून फिल इल्म, तो इसका मतलब है कि इल्म के अंदर पुख्ता, उनको पता है इल्म क्या होता है, हमारे हदूद क्या हैं, किस तरह चीज़ें साबित होती हैं, किस तरह चीज़ें जानी जा सकती हैं। तो जिनको ये पता ही नहीं है कि इल्म क्या होता है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो अब आजकल जो पाकिस्तान के लोग मुल्हिद होते हैं, मुसलमान कहना चाहिए, मुसलमान जो मुल्हिद होते हैं, वो इस तरह की बातें कुरान और हदीस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते हैं कि मेरा दिल यही चाहता है कि इनके पास इल्म नहीं है और बस बातें बना रहे हैं, उनको यही कहने को दिल चाहता है। तो बाज़ लिहाज से हमें खामोश रहना पड़ता है कि वो कहीं और ना बिगाड़ पैदा हो जाए, लेकिन हकीकत यही होती है कि उनके मजामीन पढ़ के, उनकी बातें सुनकर साफ नज़र आ रहा होता है कि पता ही कुछ नहीं। एक जैक का मतलब ये है। तीसरा जैक का मतलब जो है वो उलिल अलबाब, जो इसी आयत के आखिर पे, आठ नंबर आयत के आखिर पे आया है, उसके अतबार से है कि ये जैक का मतलब है जो अकल और दानाई से काम नहीं लेते। जो अकल और दानाई से काम नहीं लेते वो मुतशाबे चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो अकल और दानाई का मतलब है कि हमें जब बात कर रहे होते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मैंने बड़ी ईद के लिए बकरा ख़रीदा है, तो बस आपको जुमला सुनेंगे, अकलमंद आदमी कहेगा चलो ये मुबारक हो बहुत। लेकिन जो जैग वाला होगा, अच्छा उसकी रंग कैसा है, उसकी कान कैसे हैं, उसकी शक्ल कैसी है, उसका वज़न कितना है, गोश्त कितना निकल आएगा, वो आपसे, और हो सकता है वो साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। फर्ज़ कर लीजिए वो मुझे बताना चाहता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ कि मैंने बकरा ख़रीद लिया है, तो वो ऐसे सवाल करना शुरू करेगा कि मेरा झूठ पकड़ा जाए। तो ये अब जैग है, उसको इस बात पर मुतमिन हो जाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वो किसी अदालत में खड़ा है तो एक अलग बात है। तो बाज़त ये होता है कि अब नबी अकरीम सल्लम जब बातें करते तो मुशरकिन अहले किताब नबी सल्लम को नौजबिला झूठा साबित करना चाहते थे, इसलिए फिर वो इन बातों को पकड़ लेते जो इस तरह की होती है। अच्छा, अल्लाह ताला तख्त पर बैठते हैं, ओहो तख्त कैसा जी, अल्लाह ताला का जरा बताएंगे, बस ये वो मुतशाबेहात में पड़ जाते थे। तो जैक का मतलब यहाँ ये तीन पहलुओं से है। एक कम इल्म है, बातें बड़ी बड़ी करने की कोशिश हो रही है। दूसरा ये कि जैक का मतलब है कि उनके अंदर जो इल्म के बारे में जो शनासाई होती है कि चीज़ें कैसी बात की जाती है, कैसे समझी जाती हैं, कैसे नहीं समझी जाती, उनसे वाकिफ़ नहीं है। और तीसरा यह कि वो उलल अलबाब नहीं है, अकल से काम नहीं ले रहे हैं। कुछ चीज़ें हर इल्म के अंदर ऐसी होती हैं कि जिनकी हकीकत नहीं बताई जा सकती। आगे दो वजह बताई हैं उसकी कि ये मुतशाबे चीज़ों में क्यों पड़ते हैं। एक फरमाइए इब्तिगाल फितना, ये फितना चाहते हैं, और दूसरी वजह बताई है कि वह इब्तिगा तावील है, ये उनकी तावील जानना चाहते हैं। इब्तिगाल फितना, फितना कई पहलुओं से होता है। अरबी ज़ुबान में इसका मतलब होता है आजमाइश, और आजमाइश के लिए जो चीज़ें भी आ जाएं वो फितना हो जाती है। आजमाइश का जो भी सबब बन जाए, ख्वाह वो गुमराही का सबब बन रही हो, ख्वाह वो हदायत को रोकने का सबब बन रही हो, یا ہدایت کے راستے میں معاون ہو رہی ہوں. ہر چیز فتنہ ہے کیونکہ وہ امتحان کی وجہ ہے. تو امتحان کے لیے جب جو چیز بھی ہوتی ہے لیکن اس کو نیگیٹو طریقے سے جب پھیلائیں گے, مثلا میں فتنہ پھیلا رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ ایسی نیگیٹو چیزیں, ایسی غلط چیزیں جو گمراہی کا باعث بن رہی ہیں, سوسائٹی کے امن کا باعث بن خرابی کا باعث بن رہی ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہو جائیں گی فتنہ. اب یہاں قرآن مجید کے اعتبار سے فتنہ کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے, قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں پیدا کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ یہ جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو قرآن کے مقابلے میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ بھٹک جائیں, لوگوں کے دل کا اعتماد ختم ہو جائے, لوگوں کا دل اچاٹ ہو جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں اور لوگ ہماری باتوں میں آ جائیں, ان کو ایسے سوالات ہم سکھا دیں کہ جن کا جواب ہی نہ موجود ہو. یہ ساری کوششیں ابتدائی فتنہ تھی اور بعد میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہماری امت میں جنہوں نے ان چیزوں کو اسی معنی میں استعمال کیا کہ وہ آج ملحدین جو ہیں ان کا سارا زور ان چیزوں پر ہوتا ہے جو کسی خبر واحد میں آ گئی ہیں اور بس اس کو فتنہ بنا لیں گے لازمی طور پر. یعنی آپ ان کا لٹریچر اٹھا کر دیکھیے تو جو فتنہ پسند قسم کے ملحد ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوگی اس کو بڑھائیں چڑھائیں گے. علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے, ذرا سی بات تھی کہ فتنہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس میں مرچ مسالہ ڈال کے اس کو فتنہ بنا دیتے ہیں. دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ ابتغاء تاویل, کچھ لوگ فتنہ کے لیے ایسا کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے, تخت کا سائز ہوگا کیا, واقعتاً ان کی دلچسپی اس میں ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ کچھ لوگ فتنے کے لیے کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کی حقیقت جاننے کے لیے کر رہے ہیں. اب تاویل کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے, اس سے متشابہ آیتوں کی ڈیفینیشن سمجھ آ جاتی ہے کہ متشابہ آیتیں وہ ہیں کہ جن کی تاویل معلوم نہیں ہوتی. تاویل کا لفظ خوابوں کی تعبیر کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ ایسی بعض باتیں علامتی ہوتی ہیں, خیالی ہوتی ہیں, ذہنی ہوتی ہیں, ان کی کچھ مادی حقیقتیں ہوتی ہیں. تو مادی حقیقتوں کو تاویل کہتے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا خواب میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ اس کے الفاظ یا جو بات ہوتی ہے. تو خواب کی تعبیر کسی بات کی تعبیر, مثلا علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تو ہمارے بہت سارے پاکستان کی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان ان کے خوابوں کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا دیا تھا, ایک نقشہ دیا کہ یہ ہونا چاہیے, اس کی تعبیر کیا ہے, ان کی بات کی حقیقت کیا ہے, پاکستان بعض لوگوں کا خیال میں. اسی طرح حضرت یوسف نے خواب دیکھا, حضرت یوسف نے 12 ستاروں کا سجدہ والا, فرعون نے خواب دیکھا, فرعون نے کہنا چاہیے حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ 7 گائیوں والا, اس کی تعویل بتائی آپ نے. تو جب ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعویل ہے, میرے خواب کی حقیقت آج واضح ہوئی ہے. اور جب بادشاہ کو پوچھا تو وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے اس کی تعویل بتاؤ کیا ہے, تو لوگ نہیں بتا سکے لیکن یوسف نے تعویل بتا دی اس کی. تو اس خواب کا 7 گائیوں کا مطلب کیا تھا, 7 اچھے سال جس میں اچھی فصلیں ہوں گی, اور 7 پتلی گائیوں کا مطلب کیا تھا, 7 قحط کے سال. تو 7 موٹی گائیوں کے تعبیر کیا تھی, تعویل کیا تھی, قحط اچھے سال, سازگاری کے سال. تو ایسے ہی خدا کے تخت کی کیا حقیقت ہوگی, قیامت والے دن دیکھیں گے جب 8 فرشتے لے کر آئیں گے, تو اس کی حقیقت کو جاننا یہ تعویل ہے. تو فرمایا کہ یہ تعویل جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ایک گروپ جو ہے فتنہ پیدا کرتا ہے, دوسرا گروپ کیا کرتا ہے اس کی تعویل جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں رہتا ہے کہ ہم اس کی حقیقت جان لیں گے. تو میں نے بتا دیا پہلے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے حدود علم سے تجاوز کر کے کسی چیز کو جان سکیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ, جبکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کا تخت کیسا ہے, اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کے فرشتے کیسے ہیں, اللہ ہی کو پتا ہے کہ فرشتوں کے پر کتنے کتنے ہیں, और पर ज़्यादा होने के और कम होने के मानी क्या है हम नहीं जानते, ठीक है। तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई उनकी हकीकत को नहीं जानता। और मैंने पिछली दफ़ा मिसाल दी थी कि मेरी और आपकी बहुत सारी चीज़ें जिनकी मैं हकीकत नहीं जानता, वो मेरे लिए मुतशाबे हैं, और आप अपनी चीज़ों से वाकिफ नहीं होते, वो आपके लिए मुतशाबे हैं। तो जिन चीज़ों की तावील हमें मालूम ना हो वो मुतशाबे हैं, ख़ा वो इस दुनिया की हों ख़ा अगली दुनिया की हों। तो वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह ही उनकी हकीकत को जानता है। वर्रासिखूना फिल इल्म यकूलूना आमन्ना बही। यहाँ बाज़ लोगों ने, तर्जमा मैं पहले कर देता हूँ, और जो इल्म पुख्ता है वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए और इनमें से हर चीज़ हमारे रब की तरफ से है। बाज़ लोगों ने इसको पीछे जुमले के साथ जोड़ा है कि अल्लाह के सिवा इसकी कोई तावील नहीं जानता, और इल्म में पक्के लोग भी जानते हैं, तो अल्लाह के सिवा कोई तावील नहीं जानता और रासिखूना फिल इल्म के सिवा कोई नहीं जानता, कुछ लोगों ने ये तर्जमा किया। ये तर्जमा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह कि ये जो होता है इल्ला पे जुमला ख़त्म हो गया है, वर रासिखूना फिल इल्म के आगे पूरा जुमला मुकम्मल ही नहीं हो रहा। यकूलूना आमन्ना बही, अगर पीछे से ताल्लुक़ होता तो फिर वाओ आना चाहिए था, वह यकूलूना आमन्ना बही। तो अगर यहाँ पे वाओ नहीं है तो इसका मतलब है ये मुब्तदा है, वर रासिखूना फिल इल्म ये मुब्तदा है, यकूलूना से आगे खबर है उसके। ये बार दर्स की चीज़ नहीं है, लेकिन कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि वर रासिखूना फिल इल्म का ताल्लुक अगले बातों से है, पिछले जुमले से नहीं है। तो वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इन चीज़ों की हकीकत कोई नहीं जानता। तख्त कैसा है, फरिश्तों की ताकत क्या है, 8 फरिश्ते क्यों लगाए गए हैं तख्त उठाने के लिए, और जो शजत जकूम है जो दोजख में उगेगा आग के अंदर से, उसकी हकीकत क्या है, वो आग के अंदर से क्यों उग रहा है, लकड़ी का है तो तब लकड़ी को आग क्यों नहीं लग रही, अगर वो आग का है तो फिर शजरा क्यों कहा गया है, ये अल्लाह ताला उसकी हकीकतें जानते हैं। तो जो रासिखूना फिल इल्म है, इल्म के अंदर पुख्ता है, वही बात जो मैंने जैक में बारे में कही थी कि इनके इसके जुमले के दो मतलब हैं, रासिखूना फिल इल्म के जिनका इल्म पक्का है, जो डामाडोल नहीं है, गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते वो, और दूसरा ये कि वो इल्म के बारे में जानते हैं कि इल्म होता क्या है, उनको इसमें शुबा नहीं होता कि कौन सी चीज़ जानने की है कौन सी चीज़ जानने की नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, क्यों, कुल्लुन मिन इंद रब्बिना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे रब की तरफ से हैं, ये दलील है उनकी। उन्होंने सिर्फ इस बात पर एतबार कर लिया है, ये बात समझ ली है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और इसमें जो बात आएगी हम माने, हमें कोई शुबा नहीं। तो ये मिसाल के तौर पर हमने किसी को डॉक्टर मान लिया है तो जाके अपनी नब्ज़ आगे रख देते हैं, ये बताओ जी मुझे क्या तकलीफ़ है, उस पर एतबार कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसको डॉक्टर मान लिया। ऐसे ही जब हमने कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम मान लिया है तो हमारे लिए ये दलील बन गई कि अब इसमें जो बात आएगी वो सही होगी, सिवाय इसके कि हम गलत समझ गए हों, उसकी गलती दूर हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आ गई तो हम मानेंगे। तो जब अल्लाह ने कहा कि 19 फरिश्ते हैं दोजख पर मुकर्रर, तो बस ठीक है, हमने मान लिया। और जब अल्लाह ने कहा कि एक ऐसा दरख्त होगा जकूम का जो आग में से निकलेगा और वो उसको खाएंगे दोजखी, तो हमने मान लिया। लकड़ी का हो तब भी, लकड़ी का ना हो तब भी, इसका मतलब है कि वो लकड़ी ऐसी होगी जिसको वो नहीं खाएगा, उस लकड़ी को आग नहीं खाएगी। इसका तजुर्बा हम अपने स्टमक में करते हैं कि गोश्त का बना हुआ है, और जो गोश्त हम खाते हैं उसको तो हमारा मैदा हज़म कर लेता है, हमारे अपने मैदे को हज़म नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने एक कोटिंग कर रखी है अंदर जिसके ऊपर तेज़ाब असरअंदाज नहीं होता। तो ऐसा ही क्या जकूम के दरख्त के ऊपर कोटिंग नहीं हो सकती? अभी हमने एक प्रोब भेजा है सूरज की तरफ, अगर वो सादा कोई चीज़ जाने के पिघल के ख़त्म हो गई होती, लेकिन वो काम कर रहा है, अपने सूर्य के इतना करीब चला गया है कि वो टिका हुआ है, काम कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ा दी हैं कि वो पिघले ना, और ज़्यादा आग तपश को, इतना तपश को बर्दाश्त कर सके, उतने करीब हम ले गए सूरज के। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन है? तो इसलिए जो मोमिनीन है वो बात कहते हैं, जो सादा बात अल्लाह ने कह दी है कि जकूम एक दरख्त होगा जो आग में से उगेगा लेकिन होगा दरख्त, ठीक है, अल्लाह की कुदरत हम मानते हैं, बना लिया होगा अल्लाह ने, अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है। 19 फरिश्ते हैं दोजख पर, ठीक है 19 फरिश्ते ही काफ़ी होंगे। तो ये सब कुछ हम किस वजह से, कि अल्लाह ने कह दिया। हाँ, अगर वो बात अल्लाह की तरफ से नहीं है तो इसकी तहकीक हो जाएगी कि अल्लाह की तरफ से है कि नहीं। रासिखूना फिल इल्म ये काम करेंगे, और हमारी उम्मत के जो अहले इल्म हैं उनकी तारीख ही यही है, यानी हदीस का मसला पैदा हुआ उनका तहकीक करेंगे, उनका तफसीर का मसला पैदा उनका तहकीक करेंगे, फ़लसफे का मसला पैदा उनका तहकीक करेंगे। तो इसी की जद्दोजहद में हम 14 सदियाँ गुजार चुके हैं कि अगर कोई बात नबी सल्लम से मंसूब हो गई है तो ये तय करेंगे कि सही कही, सही मंसूब हुई है कि नहीं हुई। ये नहीं कि बस ठीक है नहीं माननी हमने, नहीं, द मिसम नबी करीम सल्लम की तरफ से साबित हो जाएगी तो सारा आंखों पर, उनकी तरफ से साबित नहीं होगी तो बस ख़त्म हो गई। तो कुल्लुन मिन इंदे रब्बिना, ये उनकी दलील थी कि हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें अल्लाह की तरफ से आ रही हैं। वमा यज़्ज़क्कर इल्ला उलुल अलबाब, और फरमाया कि कोई नसीहत नहीं पकड़ता इस तरह की बातों से मगर अकल वाले। उलुल अलबाब जो हैं, ये इसका सही तर्जमा होना चाहिए समझदार। अकल वाले जो हैं वो, मैं इसलिए उस ताबीर से गुरेज करना चाहता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ, आजकल क्या, पिछली 12 सदियों से हमारे यहाँ ताकुल, अकल, ये फ़लसफियाँ नामानी में इस्तेमाल हो जाती है, तो मैं उससे गुरेज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस मानी में अकल को नहीं समझता कि वो बिल्कुल अपसर्ड बातें हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। अगरचे फ़लसफियों के यहाँ वो मुसलमात की हैसियत रखती हों, लेकिन अकल वो नहीं होती जो फ़लसफे के यहाँ मानी जाती है। तो अकल जो है वो मेरी और आपकी वो सादा फैकल्टी है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को समझते हैं समझदारी से, हमारी फितरत उसके पीछे होती है, हमारी अकल उसके पीछे होती है, हमारे तजुर्बात और इल्म उसके पीछे होता है, उसकी बुनियाद पर हम फैसले करते हैं। लेकिन समझदारी का लफ्ज़ मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि समझदारी ही दर हकीकत अकल की हकीकत है, समझदारी ही। मसलन बाज़ुकात समझदारी जो है, उसको मैं कैसे बयान करूं, कि समझदारी जो है वो चीज़ को भांप लेने का नाम है, फतानत का नाम है, कि मैं इसको बयान तो नहीं कर सकता लेकिन मुझे ठीक लग रही है, मैं इसको बयान तो नहीं कर पाता लेकिन मुझे ठीक लग रही है। ये वो पीछे से कोई, अंदर से कोई सलाहियत है जो इस चीज़ को मनवा रही होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें साल बाद, 6 महीने बाद उसकी दलील भी समझ में आ जाती है। इन बुज़ुर्गों की दलील तो ये थी कि कुल्लु मिन इंदे रब्बिना, सब कुछ हमारे रब की तरफ से, बस काफ़ी दलील, अल्लाह ने कह दिया तो ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें जैसे ही बात सुनाई, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने जब सुनी कि आपने मेराज का वाक्य सुनाया आपने, तो उन्होंने कहा किसने कहा है, उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक, तो दलील क्या थी, मेरे पैगंबर ने कहा है। उन्होंने पूछा क्या, किसने कहा है, उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो कहा बस ठीक। तो नबी सल्लम पर जो एतबार है उसकी बुनियाद पर उन्होंने कह दिया। तो अब समझ आ जाएगी बाद में, जब जाकर उन्होंने देखा कि अच्छा कुरान मजीद में ये उतरी है बात, इसका मतलब ही और है, तो बस ठीक है, इत्मीनान हो गया। लेकिन उन्होंने तस्दीक किसकी की, मोहम्मद सल्लम की तस्दीक। और यहाँ जब कहा गया कि भाई जकूम का एक दरख्त होगा, तो हमने तस्दीक किसकी की, खुदा की एक बात की तस्दीक, हकीकत उसकी पता चल जाएगी। तो समझदार आदमी वो होता है जो चीज़ों को भांप लेता है, उसकी हकीकत जाने ना जाने उनकी सच्चाई उसको समझ आ जाती है। तो ये समझदार लोग जो हैं, ये रासिखूना फिल इल्म की एक रासिखूना फिल इल्म का मतलब ये भी नहीं होता कि उसने कोई PhD की हो, ये मतलब नहीं होता। कुरान मजीद ने एक आयत बोली है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसको उलमा हमारे जैसे लोग अपने लिए ले लेते हैं। वहाँ मतलब यह है कि अल्लाह से वो डरते हैं जिनको इस हकीकत का इल्म है कि कल क़यामत बरपा होनी है, बस इतना ही जानते हैं, वो उलमा है। वो उलमा नहीं है जो मदरसे में फारग हो गए, उनमें से कई ऐसे होंगे जो नहीं डरते अल्लाह से। तो जिसने ये हकीकत जान ली कि क़यामत होनी है, अल्लाह ताला का सामना होना है, बस वही अल्लाह से डरते हैं, इतनी बात जानता हूँ, वो आलिम है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनी है और कल हमें पूछा जाना है। तो फरमाया कि इस तरह की बातों को, ये जो तौफीक मिली है रासिखूना फिल इल्म की, یہ صرف عقل مندوں کو ملتی ہے، سمجھداروں کو ملتی ہے، تو ان کو نہیں ملتی جو دل کے اندر کجی رکھتے ہیں، باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، باتوں کے اندر سے عیب نکالنا چاہتے ہیں یا حقیقت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو یہاں روک لیتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو ابھی یہ راسخون فی العلم کا قول ابھی جاری ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سوموار کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔